ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఎక్సర్సైజ్ కర్కే అచ్చా లగా. ఓకే, తో ఆప్ సభీ కా రాజయోగ శివిర్ కే సత్ర వన్ మే ఆప్కా బహుత్ బహుత్ స్వాగత్ హై. ఏక్ బార్ అప్నే లియే జోర్దార్ తాలియాం బజా లీజియే కి ఆప్ ఇత్నీ సుబహ సుబహ పహుంచే హై. ఆజ్ కా హమారా టాపిక్ లేనే కే లియే హమారే బీచ్ మే హై బహుత్ హీ అనుభవీ వక్తా రాజయోగిని బీకే లక్ష్మీ దీదీ జీ. ఆప్ విశేష రూప్ సే సోనీపత్ హరియాణా సే హమారే బీచ్ మే పధారే హై. ఆప్కా ఏక్ బార్ ఫిర్ సే దీదీ బహుత్ బహుత్ స్వాగత్ హై. आप सीनियर राजयोग टीचर हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में. आपने बीएड एंड देन एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पूरी की. देन लेक्चरर के रूप में आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी. 45 वर्षों से दीदी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़कर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वर्तमान समय दीदी जी डायरेक्टर हैं सोनीपत रिट्रीट सेंटर, साथ में उसके संबंधित सेवा केंद्रों की. मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जिस जूरिस्ट विंग में आप आए हैं, पंजाब जोन के आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं जूरिस्ट विंग के. बहुत सारे टॉपिक्स लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, सेल्फ मैनेजमेंट, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में आपका स्पेशलाइजेशन है. पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा आप पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटैलिटीज, रोटरी क्लब्स, लाइन क्लब्स जैसे भारत विकास परिषद आदि में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. आपने देश भर के विभिन्न स्थानों पर राज्यों का मेडिटेशन कैंप्स भी लगाए हैं. आप एक बहुत ही प्रभावशाली वक्ता के साथ साथ एक कुशल लेखक का भी हैं. आप बहुत ही सरल चित और बहुत सादगी पसंद हैं. आपको समय प्रति समय बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सम्मानित भी किया है. तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बैच के द्वारा दीदी को सम्मानित करें. और आज का हमारा टॉपिक है नोइंग द सेल्फ. बिकॉज जब हम आप तालियों के द्वारा दीदी का स्वागत कर सकते हैं. दीदी आपका बहुत बहुत अभिनंदन. आज बहुत स्पेशल टॉपिक है नोइंग द सेल्फ, स्वयं की पहचान. जब हम स्वयं को पहचानते हैं तो स्वयं के अंदर की इनर वैल्यूज को हम पहचान लेते हैं. उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय नोइंग द सेल्फ. और जितने भी हम कहते हैं ना मन की शांति चाहिए, यही चाहिए ना, तो वो हम कैसे नोइंग द सेल्फ के साथ स्वयं को कैसे जान करके वो हम पा सकते हैं, तो ये हम आज हम दीदी से सुनेंगे. आदरणीय राजयोगिनी बीके लक्ष्मी दीदी जी.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. राजयोग शिविर का आज का जो पहला सत्र है उसका विषय है, जैसे अभी बहन बता रही थी, नोइंग दिस सेल्फ, स्वयं को जानना, स्वयं की खोज. क्योंकि आज इंसान जीवन के अंदर खुशी और शांति चाहता है. भले ही हर व्यक्ति के पास बहुत सारे लक्ष्य हैं, कुछ अलग अलग, ये बनना है, ये पाना है, लेकिन उन सबके पीछे जो मूल लक्ष्य है, चाहे व्यक्ति कुछ भी बनना चाहता है, कुछ भी पाना चाहता है, लेकिन उसके पीछे जो मूल लक्ष्य है वो है कि जीवन में शांति और खुशी मिल जाए. कुछ लोग भौतिक साधनों में उस खुशी को ढूंढते हैं, ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति सुविधाएं मिल जाएं. कुछ लोग भक्ति पूजा पाठ में उसे ढूंढते हैं. लेकिन सबका जो लक्ष्य है वो एक ही है कि जीवन खुशनुमा कैसे बने. और हम देखते हैं कि जो खुशनुमा जीवन जीने की कला है उसके अंदर हमें वो कला जीवन में कैसे आ जाए जो हर परिस्थिति के अंदर हम आनंदित रह सके। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कितना प्रसन्न चित होता है, कितना खुशनुमा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे जो जीवन की खुशियां हैं वो गायब होनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचान करना जरूरी है कि खुशी क्या है। कई बार हम सोचते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, बस बड़ी सी कोठी बन जाए, है ना, बच्चे हैं, बीवी है, धन दौलत है, तो ये सब कुछ मिल जाएगा तो मेरा जीवन खुशनुमा हो जाएगा। हम देखते हैं ये चीजें बहुत लोग अर्जित भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन में खुशी और शांति नहीं रहती है। तो खुशी क्या है और खुशी कहाँ है? केवल भौतिक चीजों में नहीं, लेकिन जो सच्ची खुशी है वो मेरे अंदर का विषय है, मेरे चिंतन का विषय है, और इसीलिए खुशी मेरी मन की स्थिति में है। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास सब सुख सुविधाएं हैं, एसी कमरे में है, दनलब के गद्दों पर है, बहुत स्वादिष्ट भोजन भी है सामने, लेकिन ये सब कुछ होते हुए अगर उसके मन में कोई तनाव है, कोई चिंता है, तो वो सारे बाहर के सुख के साधन होते हुए भी वो रात को चैन की नींद सो नहीं सकता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जिसके मन में धीरज है, संतोष है, अगर वो रूखी रोटी खा करके फरस पर लेट जाएगा तो भी उसे नींद आ जाएगी। तो खुशी कहाँ है? मनुष्य की मन की स्थिति में है, उसके चिंतन में है। और जो मनोस्थिति है वो खुद के कंट्रोल में है, वो किसी और के पास नहीं है। मेरे मन की स्थिति का जो कंट्रोल है, रिमोट है, वो मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। कैसे है वो हम आगे इसी लेसन के अंदर देखेंगे। तो खुशी हर इंसान के मन की स्थिति है, उसके चिंतन में है। अगर चिंतन अच्छा है तो जीवन खुशनुमा है, और चिंतन नेगेटिव है तो जीवन दुखी और अशांत है। तो आज के समय मानव जीवन जो है वो हम देखते हैं उसकी स्थिति क्या है। एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है। एक छोटा सा बच्चा भी अगले दिन उसकी परीक्षा होती है तो कहता है, मम्मी आज मुझे बहुत टेंशन है, जबकि वो जानता नहीं है कि टेंशन क्या होता है, लेकिन वो फील करता है, उस बोझ को फील करता है। और जितना जितना टेंशन होता है तो पढ़ाई में भी मन एकाग्र नहीं होता है। इसी तरह से जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके जीवन में टेंशन है, युवा है उसके जीवन में टेंशन है। तो हम देखते हैं चारों तरफ का जो वातावरण है वो बहुत दुख अब ये जो है ना, वो क्या चीज है, कैसे इंसान के जीवन में जो स्ट्रेस है वो पैदा। नेशन यहां दिखाई है, प्रेस स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेसर्स डिवाइडेड बाय इनर पावर्स। इंसान के जीवन में तनाव कब होता है? जब जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, विघ्न हैं, लेकिन उन विघ्नों का जो सामना करने की शक्ति है, उनको फेस करने की जो इनर पावर है वो मनुष्य के पास नहीं है। और उस आंतरिक शक्ति के अभाव में छोटी छोटी परिस्थितियां भी उसे विचलित कर देती हैं। तो अगर इस इक्वेशन के हिसाब से हम देखें तो स्ट्रेस को अगर जीरो करना है, स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो जो प्रेशर्स हैं, न्यूमरेटर है, उसको लेस करना पड़ेगा, और या जो डिनोमिनेटर है उसको रेज करना पड़ेगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा। अब जो प्रेशर्स हैं उनको तो हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज समाज ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी हैं, हर परिस्थिति को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लें तो कितने भी प्रेशर होंगे, कितनी भी बातें आएंगी, लेकिन मन विचलित नहीं होगा। तो ये जो मेडिटेशन है, राजयोग शिविर है, इसके अंदर हम यही प्रयास करते हैं कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा लें, तो बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों लेकिन वो हमारे मन के संतुलन को खराब नहीं कर सकती हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक वृद्ध व्यक्ति थे जो कि कहीं जा रहे थे, एक संत जी, महात्मा जी कहीं जा रहे थे और उनका एक शिष्य जो था वो उनके साथ था। जब वो 2 मास की लंबी यात्रा करके वापस आए अपनी झोपड़ी की तरफ, तो क्या हुआ कि बारिश के दिन थे और हवाओं के कारण, बारिश के कारण जो झोपड़ी थी उसका छप्पर उड़ चुका था और छप्पर उड़ने के कारण, जब वो छप्पर उड़ चुका था तो महात्मा जी जब आए अपनी झोपड़ी के नजदीक तो दूर से उन्होंने देखा कि झोपड़ी का जो आधा छप्पर था वो उड़ चुका था। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो महात्मा जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान का शुक्रिया करने लगे कि हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, हवाओं का क्या भरोसा था, वो पूरा छप्पर भी उड़ा सकती थी, लेकिन ये जो आधा बचा है ना, ये आपके कारण बचा है, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो। लेकिन उसके साथ जो उसका युवा शिष्य था वो भगवान को कोसने लगा कि हे भगवान, तुम कितने निर्दयी हो, लोगों की बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी हैं, उसका कुछ नहीं हुआ, हमारी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और उसका भी तुमने आधा छप्पर उड़ा दिया। अब दोनों की सोच में देखो क्या अंतर है, परिस्थिति दोनों के सामने एक जैसी है, लेकिन जिसके पास आंतरिक शक्ति है वो उसे पॉजिटिव रूप में देखता है, और जिसके अंदर अभी पूरी आंतरिक शक्ति नहीं आई है तो वो उसी परिस्थिति में विचलित है। ठीक यही स्थिति हम सबके साथ भी होती है। कई बार आप देखते हैं घरों के अंदर कोई बात हो जाए तो एक कहेगा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, दूसरा कहेगा कि बात तो है पर इतनी बड़ी नहीं है, तीसरा कहेगा ये तो कोई बात ही नहीं है। यानी हर एक के देखने का जो दृष्टिकोण है परिस्थितियों को वो अलग अलग है, क्योंकि हर एक की जो आंतरिक क्षमता है, इनर पावर है, वो अलग अलग है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करते हैं। तो राजयोग क्या है, 2 दिन से ये चर्चा हो रही है कि हमें मेडिटेशन करना है, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। तो मेडिटेशन क्या है, इसमें योग शब्द आता है, योग का मतलब ही है जोड़, एडिशन, आत्मा का मिलन ईश्वर के साथ, ये सर्वश्रेष्ठ योग है जिसको राज योग कहते हैं, जिससे इंसान अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बन जाता है, अपनी ही कर्मेंद्रियों पे उसका कंट्रोल आ जाता है, और जहां हमारी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल होता है तो मन शांत रहता है। जब हमारी ये आंतरिक शक्तियां कमजोर हो जाती हैं तो हम बोलना चाहते कुछ और हैं और निकल जाता कुछ और है, मन की स्थिति के ऊपर नियंत्रण नहीं होता। तो राजयोग हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाकर अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बना देता है। इस राजयोग शिविर का महत्व समाज के हर वर्ग के लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ दुविधाएं रहती ही हैं। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ बातें आती हैं। उन परिस्थितियों के बीच में हम अपने मन का संतुलन बनाए रखें, मन अधीर्य ना हो, मन शांत रहे। और विशेष करके आप सबका जो क्षेत्र है उसके अंदर तो बहुत सोचने की, समझने की, निर्णय करने की शक्ति चाहिए, और वो शक्ति, वो अंतर विवेक, वो अंतर आत्मा की जो आवाज है वो कैसे हम सुन पाते हैं, जितना जितना हम मेडिटेशन के द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करते हैं। तो इस खुशनुमा जिंदगी के लिए सबसे पहले मेडिटेशन को सीखने के लिए भी मेडिटेशन का जो पहला स्टेप है वो है खुद की पहचान, स्वयं के बारे में जानना कि मैं कौन हूं। आप सब सोचेंगे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कौन हैं। किसी से भी आज ये पूछा जाए आप कौन हैं, तो हम फट से अपना परिचय देंगे, जिसमें अपना डेजिग्नेशन बता सकते हैं, अपनी एजुकेशन बता सकते हैं, अपनी जाति बता सकते हैं, अपना धर्म बता सकते हैं। लेकिन ये जो भी हम परिचय देते हैं वो इस फिजिकल बॉडी का है, और हम केवल ये शरीर नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चेतना है, एक शक्ति है, जिसे कोई आत्मा कहता है, कोई चेतना कहता है, कोई प्राण कहता है, कोई रूह कहता है, कोई स्पिरिट कहता है। विवेकानंद जी जब प्रथम बार अपने गुरु के द्वार पर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि कौन। तो विवेकानंद जी जो बचपन में नरेंद्र नाम था, उन्होंने कहा, नरेंद्र ने कहा कि मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो हम केवल जो दिखाई देने वाला स्वरूप है जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं, केवल ये नहीं है, लेकिन ये हड्डी मांस का पुतला, ये शरीर, और इसके अंदर एक चेतना शक्ति है जिसे आत्मा कहते हैं। तो जड़ शरीर और चेतन आत्मा, उन दोनों के मेल से हम जीव आत्मा कहलाते हैं। इस शरीर का परिचय तो विज्ञान ने भी दे दिया है, किसमें ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, ब्रेन कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना शक्ति है वो क्या है, उसको जानना, उसको रियलाइज करना, यही स्वयं की खोज है। तो आज का हमारा जो विषय है वो यही रहेगा कि इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वो क्या चीज है। तो देखिए, ये फिजिकल बॉडी 5 तत्वों का पुतला है और इसके अंदर मस्तक के मध्य में एक अति सूक्ष्म ज्योति है जिसका रूप पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश बिंदु है, और पॉइंट इतना सूक्ष्म होता है कि इसीलिए मैथमेटिक्स के अंदर क्या कहा जाता, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, नो लेंथ ब्रेथ थिकनेस, लेकिन पॉइंट पॉइंट फिर भी है, और पॉइंट के बिना पूरा मैथमेटिक्स फेल हो जाता है। तो हम सबके अंदर भी एक पॉइंट है, एक चेतना है, जिसे गीता में भगवान ने कहा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावकः, न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा के लिए क्या कहा कि आत्मा एक ऐसी अमर सत्ता है कि जिसको ना पानी गला सकता है, ना शस्त्र काट सकते हैं, ना वायु सुखा सकती है, वो अजर अमर और अविनाशी है। तो वो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो मैं चेतना हूं। तो कई बार हम शरीर और आत्मा को एक कंबाइंड समझ लेते हैं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस शरीर की जो अवस्थाएं हैं वो कैसे परिवर्तनशील हैं। बाल्यावस्था होती है, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर वृद्ध हो जाते हैं और फिर वो आत्मा निकल करके फिर शिशु में चली जाती है। तो ये दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं। शरीर पंच भौतिक है, पांच तत्वों का पुतला है, और आत्मा जो है वो इससे अलग सत्ता है। ये जो फिजिकल बॉडी हम देखते हैं ना, इसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, पंच भौतिक, जल वायु पृथ्वी अग्नि और आकाश, पांच तत्वों से मिलकर के ये फिजिकल बॉडी बनती है। और जब इंसान का ये शरीर छूट जाता है तो पांचों तत्वों में मिल जाते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन आत्मा किस चीज से बनी हुई है? आत्मा जो है वो एसेंस ऑफ सेवन वैल्यूज है। जैसे ये शरीर पांच तत्वों का पुतला है, जल वायु पृथ्वी अग्नि और आकाश, तो हमारे अंदर जो चेतना है, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, उसके अंदर मूल रूप से सात गुण हैं, ज्ञान, सुख, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। इन सातों गुणों का पुंज, इनका एसेंस वो है सोल, वो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, जिसके अंदर ही ये सातों गुण हैं। तो जैसे हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है, इसके जो पांच तत्व हैं वो भी एक बहुत रेशो सबकी अलग अलग है। जैसे जो पानी है ना हमारे शरीर में, वो 70% होता है। कभी कभी जब पानी का लेवल डाउन हो जाए, हम कहीं दूर से चल के आए, पसीना आता है, वाटर लेवल डाउन हो जाता है, तो उस समय हमें पानी की जरूरत महसूस होती है। अगर कोई कहे दूध पी लो, भोजन कर लो, कहेंगे नहीं, पानी चाहिए। पानी क्यों चाहिए? क्योंकि ये बॉडी पानी की बनी हुई है। जिस भी तत्व की कमी होती है तो हमें फिजिकली इरिटेशन फील होती है। ठीक इसी प्रकार से मन की अशांति कब होती है, टेंशन कब होता है, डिप्रेशन कब होता है, जब आत्मा के जो सात गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, जब इनमें कमी आती है तो मन अशांत हो जाता है। हर इंसान को प्रेम चाहिए, यहां तक कि पशु पक्षी को भी प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम आत्मा का निज गुण है। हम कहेंगे चाहे रूखी रोटी मिल जाए, लेकिन प्यार से बात करो, प्रेम से रहो। प्रेम सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि प्रेम आत्मा का निजी संस्कार है। हर व्यक्ति को शांति अच्छी लगती है। चाहे हम दूसरों का शांत करते रहें, लेकिन हर व्यक्ति क्या चाहता है जीवन में? शांति हो। सुख सबको अच्छा लगता है, चाहे दूसरों को दुख देते रहें, लेकिन ये चाहेंगे कि मैं सुख से रहूं, मेरा परिवार सुख से रहे। हम सुख की इच्छा ही क्यों करते हैं, शांति की इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि ये आत्मा की मूलभूत शक्तियां हैं, ये उसके ओरिजिनल गुण हैं। हर आत्मा का निज धर्म शांति, पवित्रता, प्रेम है। कई बार कुछ लोगों को बचपन से ही जब प्यार नहीं मिलता है तो क्या कह देते हैं, इससे तो जीवन ही ना हो तो अच्छा है। इसका मतलब जीवन क्या है? प्रेम। जीवन क्या है? शांति। जीवन क्या है? सुख। जीवन क्या है? आनंद, शक्ति। हम मंदिर में जाकर के प्रेयर करते हैं, हे ईश्वर इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो ये हमारे ओरिजिनल गुण हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है और लंबे समय तक इस बॉडी के साथ रहती है, तो धीरे धीरे हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को, हम अपने आत्मिक स्वरूप को भूलना शुरू कर देते हैं और हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। और देह अभिमान के कारण ही मनुष्य के जीवन में फिर विकार पैदा होते हैं। तो आत्मा और शरीर के अंतर को हमने देखा, शरीर नाशवान है, एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एक वस्त्र छोड़ करके दूसरा धारण करती है। ये शरीर हमारा जो है, इसकी जो कर्मेंद्रियां हैं वो कर्मचारी हैं, लेकिन जो आत्मा है वो राजा है। तो आत्मा राजा जब इन सब कर्मेंद्रियों का मालिक बनकर के इस देह को चलाती है, तो जीवन में कंट्रोल, संयम, शांति सब कुछ आता है। तो इस प्रकार से आत्मा और शरीर दो भिन्न चीजें हैं। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये जो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, उसके अंदर ये तीन चेतन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मन हमारी विचार शक्ति है, जिसमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अनेक तरह के विचार उठते हैं। बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति है, जो उन विचारों के ऊपर निर्णय देती है, डिसीजन देती है, और उसके बाद हम कोई भी कर्म करते हैं तो उससे धीरे धीरे हमारी आदतें डेवलप होती हैं, और वो आदतें जब पक्की हो जाती हैं तो वही संस्कार बन जाते हैं। फिर जैसे मन में विचार उठे, बुद्धि निर्णय करेगी संस्कारों के अनुसार। तो सबसे जो पहली शक्ति है आत्मा की, जो मन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर इस मन के लिए हम क्या कह देते हैं कि ये मन तो बड़ा चंचल है, ये मन तो एक चंचल घोड़े की तरह है जो टिकता नहीं है। लेकिन घोड़ा बुरा नहीं होता है। अगर घोड़े को जो सवार है वो उसकी लगाम को ठीक से पकड़ करके अगर उस पर कंट्रोल से उसे चलाएगा तो वो घोड़ा उसे बड़ी अच्छी सैर कराएगा। लेकिन यदि सवार बेहोश होकर के बैठे उसके ऊपर और लगाम को भी छोड़ दे तो क्या होगा? फिर घोड़ा उसे जहां चाहेगा ले जाएगा और उसे आखिर गिराएगा। तो दोष इस मन का नहीं है, मन तो इंसान की बहुत बड़ी शक्ति है। इस मन को कॉन्सेंट्रेट करके ही इंसान ने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन की है। और ये मन अगर इसको एकाग्र किया जाए तो ये मन हमें ईश्वर तक भी ले जा सकता है। लेकिन इस मन पर यदि हम संयम ना रखें तो ये मन ही इंसान को अशांत और दुखी भी बना देता है। तो मन जो हमारी संकल्प शक्ति है, विचार शक्ति है, तो किसी भी व्यक्ति के मन में जो सारा दिन विचार उठते हैं वो मुख्य रूप से चार तरह के विचार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और सिंपल थॉट्स, सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ और साधारण विचार। एक नॉर्मल माइंड एक मिनट में 25 से 30 विचार कर लेता है, और जब मनुष्य टेंशन में होता है तो ये विचारों की स्पीड बढ़ जाती है, तब ये विचार 40-45 भी हो सकते हैं एक मिनट में, बहुत जल्दी जल्दी सोचता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उससे आंतरिक शक्ति बढ़ती है, खुशी मिलती है, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। तीसरे होते हैं व्यर्थ विचार, फालतू में सोचते रहते हैं, कभी बीती बातों का चिंतन करते हैं, जो 5 साल 10 साल पहले कोई बात बीत गई और वो अचानक याद आ गई, उसी के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, जिससे हमारा इतना ज्यादा लेन देन नहीं होता है, फिर भी सोच रहे हैं। कभी पड़ोसी के बारे में सोच रहे हैं, वेस्ट थिंकिंग। कभी भविष्य की चिंता करते हैं, पता नहीं कल क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, व्यर्थ में। और ये जो वेस्ट थिंकिंग है, इससे भी हमारी शक्ति जो है वो रिड्यूस होती है। और एक होते हैं साधारण विचार, जो हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या से संबंधित होते हैं, जो भी जिसका कारोबार है, जो हमारे आवश्यक कारोबार हैं, उनसे संबंधित विचार, सिंपल थॉट्स। लेकिन आज के इंसान को जो चारों में से ज्यादा विचार चलते हैं, वो कौन से चलते हैं? कौन से चलते हैं? आप सबका क्या विचार है? ज्यादा कौन से चलते हैं? नकारात्मक। देखो ये जवाब, या तो नकारात्मक या तो वेस्ट। और हम सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं सारा दिन, और कई बार तो रात को भी नींद नहीं कर पाते, उन्हीं नकारात्मक विचारों में ही समय बीत जाता है और बिस्तर पर पड़े रहते हैं। सुबह उठने के बाद फील करते हैं 5-6 घंटे बिस्तर पर रहे, फिर भी लगता है बड़े बोझिल हैं, भारी भारी हैं, थोड़ी देर और सो लें। क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट थिंकिंग थकाती है मन को। तो इसलिए जो राजयोग मेडिटेशन है, उसमें हम ये सीखते हैं कि हम अपने थॉट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे दें। क्योंकि हमें नेगेटिव सोचने की बहुत आदत हो गई है। और ये विचार मनुष्य के मन में क्यों चलते हैं? कई बार जब बहुत टेंशन होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी कहेगा कि चिंता मत करो। लेकिन चिंता छूटे कैसे, वो तरीका उसके पास नहीं होता है, क्योंकि वो खुद भी सारा दिन चिंता में ही रहता है। तो इसलिए जो विचार चलने की, जो मन के अंदर हमारे थॉट्स चलते हैं, उसका जो रूट है वो क्या चीज है, उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि विचार का महत्व कितना है। मनुष्य का एक एक विचार उसके भाग्य का निर्माण करता है। इसीलिए कहते हैं ना, संकल्प से सृष्टि रची जाती है। हर व्यक्ति के अपने ही संकल्प उसकी सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। तो किस तरह से ये प्रोसेस चलता है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि सबसे पहले मनुष्य के मन में जो विचार चलते हैं, उन विचारों से उसकी फीलिंग्स बनती हैं। अगर पॉजिटिव अच्छे विचार हैं, तो वो कैसा फील करता है? खुशी, शांति, आनंद फील करेगा जीवन में। अगर थिंकिंग नेगेटिव है, तो फीलिंग कैसी होगी? कैसी होगी, है ना? कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, तो उसकी फीलिंग कैसी रहेगी? दुख वाली रहेगी, चिंता वाली रहेगी। तो जैसा विचार, पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसी ही फीलिंग। और फिर जैसी फीलिंग होती है, वैसा ही मनुष्य का दृष्टिकोण बन जाता है। जैसे वो संत की बात हम सुन रहे थे ना, उसके विचार पॉजिटिव थे कि भगवान ने आधा छप्पर बचा दिया, तो उसकी फीलिंग खुशनुमा थी। लेकिन जो छोटा शिष्य था, वो अभी पूरा परिपक्व नहीं था, उसके विचारों में नेगेटिविटी थी कि भगवान ने बचाया क्यों नहीं, हम उसकी रोज भक्ति पूजा पाठ करते हैं, तो उसकी फीलिंग कैसी थी? बड़ी कड़वी सी फीलिंग थी और भगवान को भी कोस रहा था फीलिंग। तो जैसे विचार वैसी फीलिंग और वैसा ही दृष्टिकोण। कोई भगवान का धन्यवाद करता है तो कोई भगवान को भी गाली देता है। तो वो दोनों, वो बात हम पूरी करते हैं, गुरु और शिष्य जब रात को झोपड़ी में सोए तो जो गुरु जी थे वो बड़े आनंद में सोए हुए थे और जो शिष्य था, क्योंकि वो सोया ही नेगेटिव विचार लेके था तो उसे नींद नहीं आई। सुबह उठने के बाद उस गुरु जी ने एक बार फिर से भगवान का धन्यवाद किया कि हे ईश्वर, रात को आधे छप्पर की झोपड़ी में बड़ी अच्छी नींद आई और जब जब आंख खुली तो आसमान के तारे भी देखे, चंद्रमा को भी देखा, बड़ा हर्षित हो रहा था। और जो शिष्य था वो सुबह उठकर के फिर भगवान को गाली देने लगा। तो इसको कहते हैं एटीट्यूड, दृष्टिकोण। किससे बना? विचार, फीलिंग, फिर हमारा उससे बनता है एटीट्यूड। जैसा हमारा दृष्टिकोण बन जाता है तो हम दुनिया को उसी नजर से देखते हैं। अगर नेगेटिव दृष्टिकोण है, हवा चल रही है ना, आवाज बड़ी सुंदर आती है पत्तों की आपस में खड़खड़ाने की, तो भी जो टेंशन वाला होगा ना उसको लगेगा बड़ा घमासान हो रहा है। लेकिन जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी वो उन पत्तों के टकराने को एक डांस के रूप में देखेगा। ये है दृष्टिकोण। तो विचार से हमारा दृष्टिकोण बनता है और जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसे ही इंसान के कर्म होते हैं। व्यक्ति कर्म भी वैसा ही करेगा, कोई सुखदाई करेगा, कोई दुखदाई करेगा। और जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारी आदतें डेवलप होती हैं। और जब वो आदतें पक्की हो जाती हैं तो वही हमारी पर्सनैलिटी है, वही हमारा व्यक्तित्व है। हम देखते हैं आज हर इंसान का व्यक्तित्व अलग अलग है। किसी के पास बैठ करके आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, आप चाहेंगे हम बैठे ही रहें, बातें करते ही रहें। और किसी किसी से मिलेंगे तो वो खुद भी बोझिल है, उसकी बातचीत सुन करके हम भी बोझिल हो जाएंगे। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बनती है इंसान की उसकी आदतों से। और जो उसका व्यक्तित्व है वही उसका भाग्य है, वही उसकी डेस्टिनी है। तो हम अपने भाग्य का निर्माण कहां से शुरू करते हैं? फर्स्ट को लें और लास्ट को लें, हमारे अपने ही थॉट्स हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। हमें अपनी सोच को अच्छा बना करके, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना करके अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना है। फिर है कि ये जो विचार हैं, थॉट्स पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ये जो विचार हैं ये कैसे चलते हैं? कई बार हम कह देते ना, हम सोचना नहीं चाहते फिर भी सोच चल जाती है, हम चिंता करना नहीं चाहते हैं फिर भी चिंता हो जाती है। किस किस को लगता है ऐसा? किस किस को लगता है? हम सोचना तो नहीं चाहते पर फिर भी सोच चल जाती है, बहुतों को लगता है। तो ये जो ऑटोमेटिक जो विचार चलते हैं इसके पीछे कुछ कारण हैं। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला कारण है इन्फॉर्मेशन। हमें जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना सुबह से शाम तक, वो हमारे विचार चलने का कारण बनती है। सुबह सुबह उठते ही, सवेरे सवेरे उठते ही हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ध्यान किस पे जाता है? मोबाइल, न्यूज़पेपर। और आजकल मोबाइल में इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है ना, न्यूज में वो हाईलाइट करके जरूर दिखाएंगे, आज फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, बस जो है वो नदी में गिर गई, इतने लोग मारे गए, वहां झगड़ा हो गया, वहां ये हो गया, वो नेगेटिव। और सुबह सुबह हमने वो अपने अंदर फीड कर लिया। अब मान लो स्कूल से आने में बच्चा लेट हो गया, तो मां को पहला विचार कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? स्कूल से आने में बच्चा लेट हो गया तो पहला विचार कौन सा आएगा? या तो सोचेंगे कभी एक्सीडेंट ना हो गया हो, किडनैप ना हो गया हो। ये थॉट क्यों आया? एक्सीडेंट, किडनैप, ये सब क्यों आया? क्योंकि वो फीड कर, ये शब्द फीड थे अंदर में। तो जैसे ही कोई सिचुएशन आई तो पहले वो बात आई। ये क्यों नहीं आया? हो सकता है आज उसके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो, उसको कोई प्राइज मिलना हो, इसलिए टीचर ने उसे रोक लिया हो। वो पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे क्योंकि हमारी जो फीडिंग है वो नेगेटिव है। और सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारा जो सबकॉन्सियस माइंड है वो बहुत एक्टिव होता है। उस समय हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो हमारे अंतर मन में समा जाता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है अंतर मन, और सारा दिन फिर मन उसी दिशा में चलना शुरू हो जाता है। तो सुबह उठने के बाद एक घंटा और रात को सोने से पहले का एक घंटा, ये बहुत बहुत वैल्यूएबल टाइम है। इस समय के अंदर हमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अपने अंदर नहीं डालनी है। इसलिए सुबह उठते ही पहले कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा देखें, कोई धार्मिक कुछ भी हम ऐसा कोई अच्छी चीजें देखें, भजन सुने, कुछ भी अपने इष्ट देव को याद करें, कुछ भी सुबह सुबह अच्छा करें पॉजिटिव, जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिले। और रात को सोने से एक घंटा पहले मोबाइल को बंद कर दें, कुछ अच्छा पढ़ करके, कुछ अच्छा सोच करके सोएं। क्योंकि जो अंतिम विचार होते हैं ना रात को नींद आने से पहले, वो विचार पूरी रात हमें प्रभावित करते हैं। और अक्सर इंसान कैसे सोता है? कुछ ऐसे सीरियल देखते देखते जिसमें धोखा है, जिसमें नफरत है, और वो देख करके सो गए, सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया और रात भर वही चलता रहा और उससे नींद नहीं आती है। इसलिए रात को सोने से एक घंटा पहले मोबाइल को छोड़ दें और 10 मिनट कुछ अच्छा पढ़ें, कोई अच्छे अच्छे विचार, कोई महान आत्माओं की पॉजिटिव थॉट्स, या हम अपने भी इष्ट देव के बारे में कुछ अच्छा चिंतन करके सोएंगे तो हमारी जो नींद है वो बहुत अच्छी होगी और जो हमारे व्यर्थ संकल्प हैं वो भी नहीं चलेंगे। तो पहला कारण इन्फॉर्मेशन है, और वो भी सुबह और रात के समय हमें बहुत ध्यान रखना है पॉजिटिव सोचते हुए। अभी जैसे आप यहां सीखेंगे, रात को 10 मिनट मेडिटेशन करके सो, मन को ईश्वर में लगा के उसकी शक्तियों को अपने अंदर भर के आत्मचिंतन करते हुए सोएं, और सुबह उठते ही वो चिंतन करेंगे तो जो पूरा दिन है हमारा वो अपने आप ही अच्छा होगा। हम नेगेटिव से बचे रहेंगे। थोड़े टाइम की प्रैक्टिस के बाद आप खुद ये अंतर महसूस करेंगे। तो दूसरी चीज जो है वो क्या होती है जिससे हमारे संकल्प चलते हैं? वो होती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस। हम जीवन में बहुत सारी भूतकाल की बातों को याद रखते हैं। कभी किसी ने कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कभी हमें कहीं कोई सम्मान नहीं मिला, हम छोटी छोटी उन बीती बातों को चित्त में रखते हैं और उससे हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। और तीसरा कारण होता है हमारे बिलीफ सिस्टम। बचपन से लेकर के कुछ हमारी मान्यताएं, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक ऐसे बिलीफ जीवन के अंदर रहे हैं और वो भी हमें कुछ गलत सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो हम इन पर भी बहुत विशेष ध्यान रखेंगे और हमें अपने मन को बहुत शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है मन को, क्योंकि मनोबल ऊंचा होगा तो हम जीवन में जो चाहें सो कर सकते हैं। तो अपने इस मन को पॉजिटिव बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो थोड़ा सा हम एक्टिव होकर के बैठेंगे, क्योंकि मन को हम सब बहुत सशक्त बनाना चाहते हैं। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खे हैं जिसको हम याद रखेंगे, कुछ टिप्स हैं जिससे हमारा जो माइंड है वो बहुत पावरफुल बने। सबसे पहली बात है कि जीवन के अंदर हमें ट्रस्टी भाव रखना है, बी ट्रस्टी। गीता में भगवान ने अर्जुन को ये बहुत सुंदर ज्ञान दिया कि तुम कुछ भी करो लेकिन अनासक्त भाव से करो, आसक्ति नहीं हो। तो इसलिए घर है, परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन हमेशा ये समझो मुझे ईश्वर ने इनको संभालने की जिम्मेवारी दी है। एक होता है ट्रस्टी और एक होता है गृहस्थी, मालिक। तो जब हम ट्रस्टी भाव रखते हैं तो ईगो पैदा नहीं होता और अहंकार सारे दुखों का मूल कारण है। जैसे एक नर्स जो है वो सबकी सेवा करती है, लेकिन जब कोई जाने लगता है तो वो रोने नहीं लगती है, एक ट्रस्टी भाव से सबकी सेवा करती है, आत्म भाव से। तो वो हमेशा एक रस रहती है। तो इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, थिंक लेस, थिंक पॉजिटिव। आज हम इसके अपोजिट करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। तो जब भी मन के अंदर कोई विचार उठता है तो अपने आप से दो प्रश्न पूछने हैं कि जो मैं सोच रहा हूं क्या ये जरूरी है? अगर अंदर से आवाज आए कि जरूरी नहीं है तो उसको फुल स्टॉप लगाओ, उसे सोचना नहीं है हमें। फिर जो दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछो, जो मैं सोच रहा हूं क्या ये राइट है, ये सही है? अगर अंदर से आवाज आए कि हाँ ये सोचना सही है तो भले सोचो, और अगर अंदर से आवाज आए कि ये सोचना ठीक नहीं है तो हमें वहां पर ब्रेक लगाने की जरूरत है। कम सोचें और पॉजिटिव सोचें। तीसरी चीज मन को शक्तिशाली बनाने के लिए है अवॉइड होल्डिंग नेचर। हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखते हैं। किसी ने 5 साल पहले कोई एक छोटी सी बात आपको कह दी, आपको लगा कि मेरा अपमान हो गया, डिसरिगार्ड हो गया। अब उस व्यक्ति ने कुछ एक दो लाइन ही बोली थी, दो सेंटेंस, और 1 या 2 मिनट आपके खराब किए थे, लेकिन उसी बात को बार 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 सोच के 5 साल तक हम परेशान होते रहे क्योंकि उसे पकड़ लिया मन के अंदर। तो उस व्यक्ति ने ज्यादा तकलीफ पहुंचाई या आपके अपने चिंतन ने ज्यादा तकलीफ पहुंचाई? किसने ज्यादा? उसने तो जरा सा समय और 2 शब्द ही बोले थे, लेकिन हम उसी को बार बार सोचते हैं। जैसे कोई चोट लगती है हमें तो वो घाव कुछ दिन में भर जाता है, लेकिन अगर उस घाव को बार बार छेड़ते रहो तो क्या होगा, वो सालों साल भी नहीं भरेगा और वो बड़ा नासूर बन जाएगा। तो हम बीती बातों को पकड़ के रखते हैं चित्त में और बहुत सोचते हैं, उसको रिपीट करते हैं, और जितनी तकलीफ उस समय हुई 100 गुना 1000 गुना तकलीफ अपने आप को देते हैं। तो हमें बातों को पकड़ना नहीं है, जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना जल्दी छूट जाएंगे। और उसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बड़ी सुंदर दो बातें सिखाई जाती हैं कि अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया तो आप उसे क्षमा कर दो, माफ कर दो। और अगर आपने कुछ किसी के लिए गलत किया है तो माफी मांग लो। कई बार सोचते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे माफी मांगे, लेकिन हम मन ही मन से भी माफ कर दें, क्योंकि इंसान का एक एक जो विचार है ना, वो विचार की थॉट की एनर्जी ट्रेवल करती है, और जिस व्यक्ति के लिए हम सोच रहे हैं वो विचारों की एनर्जी, वो वेव्स, वो वाइब्रेशंस उस व्यक्ति के मन तक पहुंचते हैं। तो अगर हम मन से भी ये सोच लें कि चलो कोई बात नहीं, आज से मैं क्षमा करता हूं, क्षमा करो और भूल जाओ, इसलिए यहां सिखाते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। कई बार हम क्षमा भी ऊपर ऊपर से करते हैं और उस बात को फिर भूलते नहीं हैं, उसको पूरी तरह भूल जाओ, क्षमा करो कि कोई बात नहीं, हे ईश्वर इससे भी सद्बुद्धि देना। तो आप देखेंगे चित्त बड़ा हल्का हो जाएगा, और उस बोझ को उठाए रखेंगे तो हम बोझिल रहेंगे। कई बार हम क्या बोलते हैं कि मैं सबको माफ कर सकता हूं पर इसको माफ नहीं कर सकता। घरों के अंदर भी कोई ऐसा कोई एकाध रिलेशन होता है ना, है ना, बहुएं कहेंगी मैं सबको माफ कर सकती हूं पर मैं सास को नहीं कर सकती, सास कहेगी मैं बहू को नहीं कर सकती, है ना, ना करो फिर दुखी होते रहो, वही चिंता वही चिंतन। इसलिए बिल्कुल माफ कर दो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप। ये हम उसे क्षमा नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने आप को क्षमा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी का चिंतन करना छोड़ देंगे, जो पकड़ रखा है उसको छोड़ देंगे, तो हमारा चिंतन अच्छा हो जाएगा, हमारी समय शक्ति एनर्जी वेस्ट जाने से बच जाएगी। तो इसलिए यहां पर ये संकल्प जरूर करके जाएंगे कि अगर कोई भी बीती बात मन में पकड़ रखी है तो उसे छोड़ दो, क्षमा कर दो, और अगर हमसे कुछ गलत हुआ तो मन ही मन से माफी मांग लो, और सचमुच में जीवन बड़ा लाइट हो जाएगा। इसलिए किसी ने कहा कि हमने तो जीवन को बड़ा खुशनुमा बना लिया, हमने तो जीवन को सरल बना लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। मैं समझती हूं आप सब भी जरूर ऐसा करेंगे तो उससे ये जो हमारा मन है ये बहुत हल्का हो जाएगा, बड़ा लाइट हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट टिप जो है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक बड़ा सुंदर फार्मूला है, ए बी सी डी फार्मूला। ए फॉर अवॉइड। जब हम चिंतन करते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम उनके बारे में सोचते ही रहते हैं। कुछ चीजों के प्रति जो हम सोचते हैं, कुछ सोच को अवॉइड करो जो जरूरी नहीं है। बी फॉर बाईपास। कुछ चीजों को बाईपास कर दो, जैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है ना तो हम भीड़ में घुसने की बजाय कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बाईपास करो, लंबा भले है पर शांति का रास्ता है। हर किसी के मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी के घर से आवाज आती है तो वहीं कान खड़े हो जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और कई बार दूसरों के मैटर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहां जरूरी नहीं है उन चीजों को हम बाईपास करें। तीसरा है सी, सी फॉर कैंसल। कुछ चीजों को हमें जीवन में पूरी तरह कैंसल ही कर देना चाहिए। ईर्ष्या है, व्यसन है कोई जीवन के अंदर जो जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे रूप से संकल्प कर लें कि मुझे अपने मानव जीवन जो इतना अनमोल है उसे अच्छा बनाना है, तो मुझे जीवन के अंदर ये जो है ना व्यसन है, बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा और न जाने कितनी चीजें हैं आज के समय में नशीली चीजें, पूरी तरह कैंसिल करें। किसी के प्रति मन में घृणा है, कोई हिंसा के संकल्प चल रहे हैं, उसे कैंसिल कर दें कि मुझे ये नहीं करना है। और डी फॉर डू, जो जीवन में जरूरी है जो सुखदायी है वो मुझे जरूर करना है। जैसे मेडिटेशन, 10 मिनट के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन से अपनी दिनचर्या का आरंभ करना है। मुझे सबके लिए शुभ सोचना है, मुझे सबको क्षमा करना है, ये चीजें जो जीवन को सुखदायी बनाने वाली हैं उनके लिए संकल्प करें कि ये मुझे अवश्य करनी ही है। और सदा जीवन में खुश रहें, ऑलवेज बी हैप्पी। कुछ भी हो जाए, यहां भगवान की शिक्षाएं ज्ञान हमें ये सिखाता है हर परिस्थिति में हमें प्रसन्न चित रहना है, खुशनुमा रहना है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा इन बातों को जीवन में प्रैक्टिस में लाना शुरू करेंगे तो हमारा जो मन है वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। और जब इंसान का मन शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसका जीवन खुशनुमा होता है। तो ये हमने मन पर विचार किया, आत्मा की पहली शक्ति मन, फिर दूसरी शक्ति है बुद्धि। कई बार मन में कई तरह के विचार उठते हैं कि ये काम करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। आप सब यहां आए तो भी मन में दो तरह के विचार चले होंगे, दो तरह की आर्ग्यूमेंट चली होंगी, है ना, वकील जैसे आर्ग्यूमेंट करता है। और बुद्धि जो है वो जजमेंट पावर है हमारी, फिर बुद्धि ने सोचा कि चलो अच्छा स्थान है, निमंत्रण मिला है तो एक बार जाके देखना ही चाहिए। तो मन विचार उठाता है, बुद्धि निर्णय करती है, और उसके बाद हम कुछ भी कर्म करते हैं। आप चल करके यहां तक आए, फिर जो कर्म किया उसकी एक इंप्रेशन आत्मा पे पड़ती है। अब देखो आप यहां आए तो कैसे इंप्रेशन लेके जाएंगे, यहां रोज अच्छी बातें सुन रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, तो एक उसका प्रभाव है मन के ऊपर। ऐसे जितनी अच्छी बातें हम करते हैं, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, फिर हम कर्म करते हैं, और उन कर्मों की छाप इंसान की आत्मा पर लगती है, और वो छाप पड़ते पड़ते धीरे धीरे हमारे संस्कार डेवलप होते हैं। हमारी आदतें जब पक्की हो जाती हैं तो उसको कहते हैं संस्कार। और ये संस्कार हर इंसान के अलग अलग हैं, इसीलिए किसी को कहते हैं पाप आत्मा, किसी को कहते हैं पुण्य आत्मा, किसी को कहते हैं धर्मात्मा। ये कैसे ये अंतर है, क्योंकि जैसा सोच, जैसी बुद्धि का निर्णय, जैसे कर्म, उसकी छाप, और उससे फिर संस्कार बनते हैं। और ये संस्कार जो हैं, ये इंसान को 5 तरह से मिलते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्व जन्म के संस्कार, आत्मा कैरी फॉरवर्ड करती है पिछले जन्म के संस्कार। हम देखते हैं एक ही घर के अंदर एक ही माता पिता के बच्चे दोनों के संस्कारों में स्वभाव में फर्क होगा। एक बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट होगा, दूसरा इतना नहीं होगा। एक बच्चा बड़ा उद्दंड होगा, एक बड़ा शांत स्वभाव का होगा। एक ही माता पिता, एक ही वातावरण, एक ही पालना, फिर भी ये फर्क क्यों आया? क्योंकि पूर्व जन्म से आत्मा संस्कार लाई है। इसलिए कहते हैं कर्म साथ चलते हैं। कर्म कैसे साथ चलते हैं? कर्म संस्कारों के अंदर इंप्रेशन के रूप में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं संस्कारों के अनुसार इंसान कहां जन्म लेता है। अब देखो, एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है, एक बच्चा राजमहल में पैदा होता है, कोठी में पैदा होता है, उसको संभालने वाले इतने होते हैं। ये फर्क किसने किया? क्या भगवान ने किया? ये फर्क भगवान ने किया कि एक को झुग्गी झोपड़ी में भेज दिया, एक को कोठी में भेज दिया? भगवान हमारे कर्मों में दखल नहीं देता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म करने में इंसान स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल भोगने में वो परतंत्र है। जो किया वो उसको भोगना ही पड़ेगा। जो पूर्व जन्म से अच्छे कर्मों की पूंजी लेके आया, अच्छे वातावरण में गया। जो पूर्व जन्म से गलत कर्म खाता लेके आया, तो वो ऐसे ही स्थान पर, ऐसे ही वातावरण में पैदा हुआ। तो पहली प्रकार के संस्कार कौन से हैं? जो हम पूर्व जन्म से लाते हैं। दूसरे संस्कार होते हैं जो माता पिता से मिलते हैं, हेरिडिटी का इफेक्ट जिसको कहते हैं, वंश का प्रभाव। तीसरा संस्कार हमें मिलते हैं वातावरण से। जैसा एनवायरमेंट बच्चे को मिलता है, कई बार उसके संस्कार अच्छे होते हैं पर आगे वातावरण अच्छा नहीं मिला तो संस्कार बिगड़ भी सकते हैं। कई बार अच्छे संस्कार नहीं होते पर वातावरण बहुत अच्छा मिल गया तो संस्कार बदलने शुरू हो जाएंगे। तो तीसरे संस्कार मिलते हैं एनवायरमेंट से। और चौथे संस्कार होते हैं विल पावर। जब इंसान की अपनी स्ट्रांग विल पावर होती है तो फिर वो अपने संस्कारों को एक नई दिशा दे सकता है। कई बार हम देखते हैं इतनी सुविधाएं नहीं होती कई बच्चों को, लेकिन उनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है, विल पावर स्ट्रांग होती है। विवेकानंद, स्वामी दयानंद, कितनी विल पावर स्ट्रांग थी, तो संस्कार शिवाजी, वैसी ही दिशा बनती गई। और पांचवें होते हैं ओरिजिनल संस्कार। जब आत्मा अपने उस असली घर से आई थी इस दुनिया के अंदर, ओरिजिनल संस्कार उसके कौन से थे? वो वही थे जो सात गुण बताए, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये हमारी ओरिजिनल नेचर है, लेकिन इस सृष्टि पर आकर के गलत कर्म करते करते गलत छाप पड़ती और थोड़ा संस्कार बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आत्मा जो है, हम उसी पर आते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, उसके अंदर तीन शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन वो सूक्ष्म चेतना हमारे शरीर में कहां है? मस्तक के मध्य में, जिसको भ्रकुटी कहते हैं। यहीं बैठ करके वो इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, और इस शरीर को चलाने के जो मुख्य पुर्जे हैं वो इसी एरिया के अंदर हैं। आंखें हैं देखने के लिए, कान सुनने के लिए, मुख बोलने के लिए, और ब्रेन है जो सारा निर्णय करता है, कंट्रोल रूम है। तो आत्मा कंट्रोलर है, ब्रेन कंट्रोल रूम है। तो जैसे कोई भी कंट्रोलर कंट्रोल रूम के समीप बैठ करके ही कंट्रोल करता है, तो आत्मा भी इस पूरी बॉडी को यहां बैठ करके चलाती है। जैसे गाड़ी होती है, उसमें ड्राइवर के बैठने की फ्रंट सीट होती है, जहां बैठ करके वो गाड़ी को कंट्रोल करता है, क्योंकि वहीं पर उसके आसपास स्टेरिंग है, ब्रेक है, गियर है। तो आत्मा भी यहां भ्रकुटी में बैठ करके शरीर को चलाती है। जब हम कई बार बहुत ज्यादा सोचते हैं तो कहते हैं आज तो माथा भारी हो गया, सिर में दर्द हो गया। तो जो सोचने विचारने वाली शक्ति है वो यहीं पर है। और हम सबका असली घर कौन सा है? ये शरीर तो टेम्परेरी सीट है आत्मा की, क्योंकि आत्मा तो अमर है और शरीर तो नाशवान है, एक ना एक दिन छूट जाएगा। तो वो इस तीन लोक के चित्र में दिखाया है, जिसमें नीचे साकार जगत है, नीला आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, इससे ऊपर है सूक्ष्म देव लोक, और इससे भी पार जो तीसरा लोक है जिसे शांति धाम, परम धाम, आत्माओं की दुनिया है ना, मुक्ति धाम, अनेक नामों से याद करती हैं, वहां आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट रूप में जाती है। और वहां से ही उतर करके जब हम इस सृष्टि मंच पर आते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो उसको जन्म कह देते हैं। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो उसे ही मृत्यु कह देते हैं। तो इस प्रकार से हम सबको ये पहचान मिली, मैं कौन हूं? मैं एक अति सूक्ष्म चेतना हूं, एक प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज आत्मा हूं। मस्तक के मध्य में एक चमकता हुआ सितारा हूं। तो एक बड़ा सुंदर ये पॉजिटिव थॉट है जिसको हमें आज सारा दिन चिंतन करना है, मैं वास्तव में कौन हूं? जो अपनी बाहरी जो हमारा परिचय है, आइडेंटिटी है, उसकी बजाय जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, जो मेरी मेरा इनर सेल्फ है, उसे याद रखना है कि मैं इस मिट्टी के शरीर में, मस्तक के मध्य में एक प्रकाश पुंज आत्मा हूं, एक शक्ति पुंज आत्मा हूं। और मैं किसकी संतान हूं, जिसका परिचय आपको अगले मेडिटेशन लेसन में मिलेगा, कि मैं उस सर्वशक्तिवान खुशियों के भंडार ईश्वर की संतान हूं, और मेरा पिता खुशियों के खजाने का मालिक है। तो मुझे भी जीवन में सदा खुश रहना है और समाज में सबको खुशी बांटनी है, क्योंकि जितना हम खुशी बांटते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर के हमारे हमारी तरफ फिर वापस आनी शुरू हो जाती है। अभी हम चंद मिनट के लिए जो हमने आत्मा का ज्ञान सुना, आत्मा की पहचान मिली, तो हम वो आत्मचिंतन करते हुए आत्मा को रियलाइज करेंगे। तो जैसे देखो, हमारा ये जो शरीर है, इसके अंदर एक प्रकाश का सूक्ष्म सितारा हूं मैं, चेतना हूं, प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। और मैं आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में क्या हूं? बिल्कुल शांत हूं, शुद्ध हूं, पवित्र आत्मा हूं। मैं तो कुछ समय के लिए सृष्टि मंच पर खेल करने आई हूं, एक्टिंग करने आई हूं। मैं केवल एक एक्टर हूं, ये शरीर मेरा माध्यम है, ये मेरी ड्रेस है। जैसे कोई भी एक्टर जो है वो ड्रेस पहन करके स्टेज पर आता है, तो किसी को स्त्री की ड्रेस मिली है, किसी को पुरुष की ड्रेस मिली है, कोई बच्चे के रूप में अपना रोल कर रहा है, कोई पिता के रूप में रोल कर रहा है, लेकिन ये बाहर सब कुछ रोल है और मैं वास्तव में सोल हूं। तो कुछ क्षण के लिए इस इतने बड़े मिट्टी के कमरे को भूलकर मस्तक में एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, और उस आत्मा से गुणों का प्रकाश फैल रहा है। तो जैसा हम सामने देख रहे हैं, ऐसा ही खुद को फील करना है। आपकी मदद के लिए मैं कुछ शब्द उच्चारण करूंगी, आत्मचिंतन के लिए। आपको वो शब्द बोलने नहीं है, लेकिन आपको वैसा वैसा फील करना है, रियलाइज करना है। ये जो इतना बड़ा जो हमारा मिट्टी का कमरा है, इसके बोझ को भूल करके मैं मस्तक में एक जगता हुआ दीपक हूं, एक जागती ज्योत हूं, एक प्रकाश का हल्का सितारा हूं, अपने उस शांति के स्वरूप पर, उस तार पर अपने मन को एकाग्र करेंगे। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए चारों तरफ से अपने मन को समेट कर चले अपने अंदर की ओर, अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में कौन हूं? मैं इस पंच भौतिक शरीर में, मस्तक के मध्य में एक जागती ज्योत हूं, एक अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज हूं। फील करें मिट्टी के कमरे में, मस्तक के मध्य में एक छोटा सा सफेद सितारा चमक रहा है। यही मेरा असली स्वरूप है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा सितारे से शांति की तरंगे निकल रही हैं। मेरे चारों तरफ शांति ही शांति है। मैं ज्योति सितारा आत्मा, पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। मुझ आत्मा सितारे से पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है। मैं ज्योति पुंज आत्मा, प्रेम स्वरूप हूं। मैं आत्मा सारा दिन अपना कारोबार करते हुए मुझे सबको शांति बांटनी है, सुख बांटना है, प्रेम का व्यवहार करना है। मैं ज्योति पुंज आत्मा आज ये संकल्प करती हूं, सब बीती बातों को भूल कर मुझे सबको क्षमा दान देना है। कुछ क्षण के लिए उन आत्माओं को अपने मन की आंखों के सामने लाएं, जिनके लिए हमने कुछ बातें मन में पकड़ कर रखी हैं। आज संकल्प करें कि मैं इन सबको क्षमा करता हूं। क्षमा, क्षमा, क्षमा। और मैं आत्मा ये भी संकल्प करती हूं कि मेरे द्वारा अगर किसी को कष्ट मिला, दुख हुआ, तो मैं उन सब से क्षमा मांगती हूं। मैं ज्योति पुंज आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, परम शक्ति ईश्वर की संतान हूं। मुझे सदा खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है। ओम शांति शांति शांति। आज सारा दिन हम इसी प्रकार का शांति का चिंतन करते हुए बहुत लाइट रहेंगे और सबके साथ शांति और प्रेम का व्यवहार करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स, इतना सुंदर हमको परिचय दिया, स्वयं का परिचय मिला। हम कौन, आत्मा कहाँ रहती है? ओ वेरी